प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन शैतान को छूने न देना, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए परिवार के साथ आनंदित हैं। और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में पौलुस के द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और गुणकारी बातों को सीखा और जाना है। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने हमें बताया कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए आदर का कारण बनना है और हमें बताया गया कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और एक दिन हम मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। और इसी प्रकार से हमें आगे बताया गया कि बच्चों को रिस नहीं दिलाना है, अर्थात बच्चों को प्रेम के साथ उन्हें समझाना है, परमेश्वर के वचन और डर भय में उन्हें बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे डांट डपट न करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें रिस न दिलाएं ताकि वे अच्छे बच्चे बन सकें। आज हमारे परिवार में कई माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि बच्चे बिगड़ते हैं। पौलुस हमें इस बात का स्मरण दिलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताता है कि जो कोई मसीह यीशु में विश्वास कर लेता है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वह दास हो चाहे वह स्वामी हो, दोनों ही भाई भाई हैं। और इसका अच्छा उदाहरण उसने हमें फिलिमोन के दास उनेसिमस के जीवन से दिया, जो अपने स्वामी के घर से भाग गया और पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुनकर उसका जीवन परिवर्तित हो गया और तब पौलुस उसे वापस उसके स्वामी के पास भेजता है और पत्र के साथ में कि वह उसे अब दास के समान नहीं परंतु एक भाई के समान ग्रहण करे। मेरे प्रियो, इस प्रकार के बातों को हमने अब तक सीखा है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम दूर दराज में रहकर भी आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, पिताजी आप उनकी आत्मिक आंखों को, मन और विचारों को, एकाग्रतापन को खोल दीजिए, ताकि आज हम आपके वचन में से सीख सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। इसी के साथ हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। प्रभु जी आप उनसे बातचीत करें ताकि वे समझ सके कि आप उनकी रचना हैं, आपने उन्हें बनाया है और इतना ही नहीं आप उन्हें प्यार करते हैं, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, आप उन्हें शांति और आनंद देना चाहते हैं। आज वे इस बात को समझने पाए ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ अब इफिसियों की पत्री को खोल लीजिए, 6:10। इफिसियों की पत्री 6:10 जहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ध्यान दीजिए, लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से है जो इस संसार की प्रधानताएं हैं। मेरे प्रियो, शक्तियां हैं, शासक हैं। हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो स्वर्गिक स्थानों में भी है। आज हम इस संसार में चारों तरफ देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी जाकर के हम लड़े भिड़े, जी नहीं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है, शैतान की उन सेनाओं से है जो अनदेखी हैं, हम देख नहीं सकते परंतु उसकी शक्तियां कार्यरत हैं। इफिसियों की पत्री 6:11 में आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर पौलुस के कहने का क्या अर्थ है, अर्थात पौलुस क्या कहना चाहता है? वह शैतानी शक्तियों के विषय चर्चा कर रहा है जो आत्मिक है। ध्यान दीजिए, वह पत्री के अंत में है और कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य से शैतान नहीं हो सकते या विजय नहीं पा सकते। पौलुस यहाँ शब्दों की कला द्वारा व्यक्त करता है और कहना चाहता है कि शैतान की युक्तियों पर जय पाने के लिए परमेश्वर की सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, हमारे सामर्थ्य का एकमात्र स्रोत यही है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि कलीसिया एक योद्धा है और उसे संसार देह जैसे बैरियों का सामना करना है, शैतान की युक्तियों पर जय पाना है, अतः उसे परमेश्वर से बल प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह युद्ध आत्मिक है जिसमें शारीरिक शक्ति किसी भी काम की नहीं है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, अर्थात हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन की संगति में रहेंगे, उसकी निकटता में रहेंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बलवंत बनते जाएंगे और तब हम शैतान की युक्तियों का सामना करने पाएंगे। आगे लिखा है इफिसियों के पत्री 6:12 में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ध्यान दीजिए, एक विश्वासी का वैरी मांस और लहू से नहीं है, जी हाँ, उसका वैरी आत्मिक है। हमारे लिए यह जानना उचित है कि विश्वासी का शरीर नहीं है जिससे हमें युद्ध करना है। विश्वासी तो यह मानकर चलता ही है कि उसका शरीर मृतक है और उसने परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पण किया हुआ है। देह पर जय पाने की रणनीति रोमियो की पत्री 6 में दी गई है। पुराने मनुष्यत्व से युद्ध करने में तो निश्चय ही पराजय है, जिसका अनुभव पौलुस रोमियो की पत्री 7 में सुनाता है। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर का कवच ही शैतान के वार और युक्तियों को सह सकता है। उसके पास नाना प्रकार की आत्मिक मिसाइलें हैं। उस पर विजय पाने के लिए हमें एक मिसाइल विरोधी प्रणाली की आवश्यकता है। यही कारण है कि एक विश्वासी को समझ लेना है कि उसका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा वैरी आत्मिक है और हमारा युद्ध भी आत्मिक क्षेत्र में है। शैतान प्रत्येक विश्वासी का वैरी है और हमें उसी से युद्ध करना है। शैतान पर विजय पाने का एकमात्र उपाय पद 11 में दिया गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जी हाँ, हमारे इस आत्मिक युद्ध में शैतान ने अपनी युक्तियां क्रमबद्ध की हुई हैं। हम उन युक्तियों से युद्ध करते हैं। यहां पर स्पष्ट है कि हम दुष्टता की शक्तियों से मल युद्ध करते हैं। पद 12 का अनुवाद पढ़ने में गंभीर प्रतीत नहीं होता है, परंतु वह वास्तव में एक घमासान है जो अंधकार अर्थात आत्मिक शक्तियों के साथ हो रहा है, और ये आत्मिक बैरी छोटे मोटे नहीं, प्रधानताएं हैं, प्रधान शक्तियां हैं, स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक सेनाएं हैं। हमारा यह युद्ध चलता रहता है। प्रिय मित्रों, हमारे चारों ओर दुष्ट आत्माओं का संसार है जो इस पल भी क्रियाशील है। यदि मैं अपनी जवानी में यही बात कहता तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते, वरन एक महिला ने तो कह भी दिया था, आप तो वास्तव में भूत प्रेत को मानने वाले लगते हैं। परंतु आज तो शैतानी संसार इस चर्चा का विषय है और प्रदर्शन में भी है। हमारे अनेक देशों में तो शैतान की आराधना की जाती है, शैतान के आराधनालय भी हैं। उन समुदायों में विचित्र बातें होती है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने कहा, मेरे भाई आप मानेंगे यह सब वास्तविक है? कौन कहता है कि यह सब वास्तविक नहीं है? अपनी आंखें खोलकर देखें, आपके चारों ओर क्या हो रहा है। प्रेत सिद्धियों की ही बहुतायत देखने को मिलेगी। संसार में दुष्टता की शक्तियां काम कर रही हैं। वे कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासी के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु यीशु के विरुद्ध पूरे जोर शोर से काम में लगी है। इसे अनदेखा आप न करें। यह सच है, हमारी शक्ति इसके जोड़ की नहीं है। आत्मिक बैरी पर विजय पाने का तथ्य दानियल की पुस्तक अध्याय 10 में प्रकट है। दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसे उत्तर नहीं मिल रहा था। उसने 3 सप्ताह प्रार्थना की। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। अंत में स्वर्गदूत उसके पास आया और उसकी देह को छूकर कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने यह वचन मुझसे कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थर थराता रहा। अब दानियल उससे पूछ सकता था, तू अब तक कहां था? अब सुनिए उसने क्या कहा। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 पद में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। वह शैतान के दूत से लड़ रहा था, उसे अपनी सहायता के लिए सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी। यह आत्मिक युद्ध है और आज भी चल रहा है जिसमें हम संघर्षरत हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम इन सारी बातों को नहीं देख पाते हैं और कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि जब आप परमेश्वर के निकटता में समय व्यतीत करते हैं, उसकी संगति में बढ़ते जाते हैं, तो आपके विरोध में शैतान अपनी सेना लगा देता है। आत्मिक ताकतें आपको परेशान करने लगती हैं जो अंधकार की शक्तियां हैं। हम पहले देख चुके हैं कि यह सेना सुव्यवस्थित है। अधिकार, वे दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के सब देशों पर दृष्टि रखती हैं। वे संभवतः सेना में जनरल के पद के समान हैं। शक्तियां वे दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्य को ग्रस्त करना चाहती हैं। अंधकार के हाकिम वे दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास शैतान के सांसारिक कामों का उत्तरदायित्व है, और तब दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये वे दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास धर्म का काम है। मेरे मित्रों, शैतान के पास सुव्यवस्थित तंत्र है। वह इस संसार में अपना काम बड़े सुव्यवस्थित तरीके से करता है। इसके साथ ही पाशरों में शैतान मनुष्य को दुख, हताशा, कष्ट और जीवन की त्रासदी में ले लेता है और उसे पीड़ित करता है। आज संसार की समस्याओं का एक महान कारण वही है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मनुष्य खुश रहे, वह नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, वह नहीं चाहता कि परिवार बना रहे, माता पिता, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें। जी हाँ, शैतान कभी बर्दाश्त नहीं करता। अतः हम बैरी को पहचान गए हैं कि वह आत्मिक है और उनका प्रधान शैतान है। अब हमें युद्ध क्षेत्र को देखना है। मेरे विचार में कलिसिया इस आत्मिक युद्ध को अब देख नहीं पा रही है। हम सोचते हैं कि हमारा आराधनालय अति सुंदर है और लोग आकर्षित हो रहे हैं तथा हमारे पास बहुत पैसा भी है, तो सब ठीक है। कलिसिया का युद्ध क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र नहीं है। मैं कहता हूं कि एक आर्थिक रूप से स्थिर कलिसिया यदि ऋण के बोझ में दब जाए तो कोई गंभीर समस्या अवश्य है। इसका अर्थ है कि आत्मिक युद्ध में वह कलिसिया घर कर गई है। अब उनके लिए एक प्रश्न है, क्या उसके सदस्य मसीह में दृढ़ हैं? क्या वहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है? क्या सदस्यों में प्रेम और सहयोग की आत्मा है? क्या पीठ पीछे बुराई में कमी आई है? मेरे प्रियो, विधि विधान पर अभ्यास करने की अपेक्षा हमें मसीह में हमारे भाइयों के साथ सही संबंध बनाने का अभ्यास करना चाहिए। यदि आलोचना, कड़वाहट और घृणा का वातावरण होगा तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा। कलिसियाएं सदस्यों की संख्या, उनके प्रभु के निमित्त निर्णय आदि पर गौरव करती है, परंतु 2 वर्ष बाद जब उन मन फिराने वालों को आप देखें तो वे वहां नहीं हैं। हम आज चल रहे हैं आत्मिक युद्ध से अनभिज्ञ हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है। यह शैतान की युक्ति ही तो है कि हम मनुष्य अंधा होकर हर प्रकार की पूजा विधियों, विचारों, झूठे विश्वास आदि में उलझे रहें। इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर का वचन वहां अपना महत्व खो देता है। यह शैतान और उसकी सेना का काम है। वे ही हमारे बैरी हैं। आज जब हम अलग अलग कलीसियाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। अंदरूनी झगड़े हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, घमंड है और तंगियां हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल हो चुकी है और लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह सब कुछ कलिसिया की ओर से नहीं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु यह तो शैतान की ओर से है जो हमारा बैरी है। वह नहीं चाहता कि प्रभु यीशु की कलिसिया में लोग आएं, संगति करें, प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, परंतु वह तो चाहता है कि हमारे मध्य में फूट हो जाए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है, इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि हमें शक्ति कहां से मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आइए आज हम प्रभु के निकटता में आए, वचन पर विश्वास करें, प्रार्थना में, वचन में हम समय दें, ताकि अधिक से अधिक समय हम परमेश्वर की निकटता में व्यतीत कर सकें और उन अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकें। आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे युवाएं भटक रहे हैं, उनके दिशा निर्देश का कोई साधन या कारण नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हम माता पिता उन्हें सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, और यह सब कुछ परमेश्वर के वचन से ही संभव है। जिस प्रकार से हम नीति वचन की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहां पर सुलेमान राजा कहता है कि बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय मानना है। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही इस बात को जान गए हैं कि हमारा इस संसार में रहना आसान नहीं है, परंतु हमें इस संसार में उन अंधकार के हाकिमों से, उन आत्माओं से, शैतान की सेनाओं से युद्ध करना है, और यह ताकत हमें सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। आज के स्वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आप सबकी सहायता करे कि आप प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आओ यीशु के गुण गाओ, आओ परमपिता का ध्यान लगाओ। आओ यीशु के गुण गाओ, आओ परमपिता का ध्यान लगाओ। आओ यीशु के गुण गाओ, आओ। प्रेम